सुजीत कुमार की आवाज़ में प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, जो कि जयशंकर प्रसाद मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ है, और यह BA द्वितीय वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र है कि रिकॉर्डिंग होने जा रही है, जिसका पहला अध्याय है भारतीय सामाजिक इतिहास के ज्ञान के आधार स्रोत। चीन काल से मध्य काल तक समय समय पर ऐसे अनेकानेक साहित्य का निर्माण हुआ जिनसे भारतीय समाज और संस्कृति पर विपुल प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म प्रधान साहित्य के अतिरिक्त अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की भी रचना की गई, जिनसे तत्कालीन समाज की गतिविधियों का पता चलता है। फलतः इतिहास और साहित्य दोनों विधाओं से संयुक्त अनेक कृतियाँ लिखी गई हैं, जिनसे समाज का सांस्कृतिक जीवन उत्तरोत्तर मुखर होता है। विभिन्न पुराण कथाओं के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक क्रियाएं अभिव्यंजित की गई तथा परंपराओं और रिक्त को सुरक्षित रखा गया। अभिलेख, मुद्राएं, अवशेष, स्मारक आदि विविध पुरातात्विक सामग्रियों से भी भारतीय समाज के विविध पक्ष उद्घाटित होते हैं तथा इतिहास की प्रामाणिकता पुष्ट होती है। विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण भी भारतीय समाज और संस्कृति के भंडार को भरते हैं। अतः समय समय पर लिखने वाले ऐसे विदेशी लेखकों के विवरण अपने अपने अनुसंधान, अनुभव, ज्ञान और पठन के उल्लेख प्रायः भारतीय श्रुति, स्मृति और आचार विचार से मेल नहीं खाते, और जहाँ तहाँ वे अपना अनोखा विवरण देते हैं। साहित्यिक आधार स्रोत। भारतीयों ने वैदिक युग से लेकर मध्यकाल तक अनेक प्रकार के साहित्य की सृजना की है, जिनसे भारतीय इतिहास और संस्कृति पर समुचित प्रकाश पड़ता है। ये साहित्य प्रधानतः धार्मिक होते हुए भी तत्कालीन समाज और संस्कृति पर समुचित की व्यंजना करते हैं। ऐसे साहित्य तीन भागों में विभाजित किए गए हैं, पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा जैन साहित्य और तीसरा बौद्ध साहित्य। पहला ब्राह्मण साहित्य क वेद पूर्व वैदिक युग से लेकर उत्तर प्राचीन काल तक हिंदू धर्म और समाज से संबंधित अनेक साहित्यिक कृतियों की रचना की गई। इन कृतियों की रचना प्रायः ब्राह्मणों ने की, इसलिए ऐसी समस्त कृतियों के ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम वेद आते हैं। वेद हिंदू धर्म के प्राचीनतम प्रारंभिक ग्रंथ हैं, जिनसे तत्कालीन आर्य सभ्यता, समाज और धर्म उद्घाटित होता है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिससे पूर्व वैदिक आर्यों के जीवन, शिक्षा, समाज, अर्थ, धर्म और राज्य की प्रारंभिक अवस्था पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इसके विवरण इस बात का प्रमाण है कि पूर्व वैदिक युगीन आर्य सभ्य और सुस्त जीवन व्यतीत करते थे तथा आध्यात्मिक और दैवी शक्ति का आदर करते थे। लौकिक और मानवीय मूल्यों के प्रति भी वे सजग और जागरूक थे। इसका समय प्रायः 1200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह 8 भागों में विभाजित है, जो अष्टक कहा जाता है, तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभक्त है। इस प्रकार ऋग्वेद में 8 अष्टक और 64 अध्याय हैं। वैसे संपूर्ण ऋग्वेद 10 खंडों में विभाजित है, जिन्हें मंडल कहा जाता है। मंडल के मंत्र सूत्र के नाम से जाने जाते हैं और सूत्र के खंड ऋचा। ऋग्वेद के कुल सूक्तों की संख्या 1028 हैं और मंत्रों की संख्या 11000 है। अन्य तीनों वेद उत्तर वैदिक काल की कृतियां मानी जाती हैं, जो आर्यों के उत्तरकालीन जीवन को अभिव्यक्त करती हैं। सामवेद की रचना उद्गाता ऋत्विक के लिए की गई थी, जिसका यज्ञ के अवसर पर उपयोग किया जाता था। साम का अभिप्राय गान है, जिसमें 7 स्वरों का संयोग है। देवताओं की स्तुति में सामवेद की ऋचाओं की संख्या 1559 से है। इसकी 75 ऋचाएं ऋक् संहिता से अलग और स्वतंत्र हैं। यजुर्वेद में गद्य वाक्यों का समावेश है, जो ऋषियों द्वारा अर्धर्यु यज्ञ के अवसर पर प्रयुक्त किए जाते थे। यज्ञ के आयोजन और अनुष्ठान में अर्धर्यु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। इसको 2 भेद दर्शित किए गए हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं, विनियोग वाक्य नहीं है, किंतु कृष्ण यजुर्वेद में छंदबद्ध मंत्रों के साथ गद्यात्मक वाक्यों का भी विनियोग है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता है, जिसमें 40 अध्याय हैं। यज्ञों की निष्पन्नता और उनका कार्यान्वयन इससे संबंध है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं हैं, तैत्रीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता और काठकापिष्ठल संहिता। इन संहिताओं में यज्ञों का वर्णन है। अथर्ववेद में यज्ञों का बहुत कम उल्लेख है, बल्कि मोहन, मारण, उच्चाटन, विघटन और विवाह, श्राद्ध आदि क्रियाओं का अधिकाधिक उल्लेख है। इन क्रियाओं को करने की विधियां और प्रकार इसमें वर्णित किए गए हैं। अतः तत्कालीन जीवन के अंधविश्वासों और तमस रुचियों का ज्ञान अथर्ववेद से प्राप्त होता है। इसमें 20 कांड, 731 सूक्त और 5849 मंत्र हैं। इसकी प्रायः 1200 ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। इसका 6ठा भाग गद्य में है। ख ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में 2 वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों से भी जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों का विस्तार से अर्थ, भाष्य, प्रयोग और आख्यान किया गया है। साथ ही यज्ञ यागदिकों के विधानों का भी सविस्तार विवेचन है। इसमें समाज और धर्म के विविध पक्षों पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के 3 भेद हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक अरण्य से बना है, इसमें यज्ञ के आध्यात्म तत्व की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण, तांड्य या पंचविंश ब्राह्मण, षण्विंश ब्राह्मण और गुपथ ब्राह्मण अधिक अलौकिक घटनाओं विख्यात हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में वेद संदर्भित विविध आख्यान, यज्ञ, वर्ण समाज, शकुन, अलौकिक घटनाओं, देवत्व के रहस्य, ज्ञान और भक्ति का विस्तृत समावेश है। इनमें आर्यों के जीवन का सुंदर चित्रण किया गया है तथा प्रारंभिक हिंदू समाज के विषय में संभावित ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषद साहित्य वेद समन्वय की अंतिम कड़ी है। इसमें अध्यात्म और अलौकिक विद्या के विकट और गूढ़ रहस्यों का विस्तार से प्रतिपादित किया गया है। वैसे उपनिषद का अर्थ ही अध्यात्म विद्या है, जिसके माध्यम से ज्ञान तत्व का विकास और ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसमें जीव और जगत के भेद, सच्चे ज्ञान की विवेचना, ब्रह्म के प्राप्त करने के माध्यम आदि विषय पर विशद वर्णन मिलता है। उपनिषदों की संख्या 179 से भी अधिक है, किंतु इनमें बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय, कौशितकी, तैत्रीय, केन, काठक, ईश, श्वातेश्वर, प्रश्न, मांडुक्य आदि अधिक ख्यात हैं। प्रधान उपनिषदों की रचना भगवान बुद्ध के समय से बहुत पहले ही हो चुकी थी। इन उपनिषदों का प्रधान विषय आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म के स्वरूप और उनका पारस्परिक संबंध है। वस्तुतः उपनिषद और वैदिक युगीन ऋषि मनीषियों के आध्यात्मिक विचारों और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। ग वेदांग की रचना वेदों के अर्थ और विषय को समझने के लिए की गई थी, इसलिए इन्हें वेदांग कहा गया है। इनकी संख्या 6 थी, शिक्षा, व्याकरण, निरक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। वेदों के शुद्ध उच्चारण और पाठ के लिए शिक्षा साहित्य का निवेशन किया गया था। वस्तुतः वेदों का अर्थ उसके शुद्ध और सही उच्चारण और पाठ से अभिव्यक्त होना माना गया है। भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए व्याकरण की व्यवस्था की गई थी, इससे उसकी गतिशीलता और तारतम्य बना रहा। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी सर्वप्रथम लिखा गया एक महान व्याकरण ग्रंथ है, जिसकी रचना 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से 3री सदी ईस्वी पूर्व के बीच में किसी समय की गई थी। इसका भाष्य 2री सदी ईस्वी पूर्व में पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में किया। 3री सदी ईस्वी पूर्व में कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों के आधार पर वर्तिका का प्रणयन किया। कालांतर में आकर 6ठी सदी में अष्टाध्यायी के आलोक में काशिका की रचना की गई, जिसका भाष्य वामन और जयादित्य ने किया था। इन व्याकरण ग्रंथों से भी तत्कालीन समाज के विभिन्न पक्षों का दिग्दर्शन होता है। वैदिक ग्रंथों के अर्थ ज्ञान और उसकी व्याख्या के निमित्त निरुक्त की नियोजना की गई थी। यास्क ने निरुक्त के माध्यम से वैदिक शब्दों के अर्थ, भाष्य और व्युत्पत्ति प्रस्तुत करते हुए उन पर गहन विचार किया है। वेद रचना छंद अथवा पिंगल पर निर्भर करती है। छंद शास्त्रों वेदों की ग्रंथन शिला है। तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन की वैज्ञानिक गतिविधि ज्योतिष साहित्य से अभिव्यक्त की गई है। नार दस संहिता जैसे ग्रंथों में 18 ज्योतिष विदों के उल्लेख के साथ अनेक विवरण हैं। गार्गी संहिता और वृहद संहिता ज्योतिष के ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें सामाजिक जीवन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कल्पसूत्र साहित्य में विविध सामाजिक और धार्मिक विधि विधानों तथा नियम निर्देशों का वर्णन है। कल्पसूत्र साहित्य के 3 भाग हैं, श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्रों और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्रों से वैदिक युगीन यज्ञों और उनके वर्गीकरण का समावेश है। गृह सूत्रों में कार्य स्थित संस्कार अनुष्ठान आचार विचार और कर्मकांड का वर्णन है तथा धर्म सूत्रों में धार्मिक नियमों राजा प्रजा के कर्तव्य और अधिकार सामाजिक वर्ण प्रधान भेद आश्रम आदि विभिन्न व्यवस्थाओं का उल्लेख है। इस प्रकार शिक्षा कल्प विवरण व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष का अन्योन्याश्रित संबंध है। घ महाकाव्य रामायण और महाभारत विशाल महाकाव्यों के तदयुगीन जीवन के विविध पक्षों पर आलोक पड़ता है। इन महाकाव्यों से तत्कालीन राजनीतिक आर्थिक और धार्मिक जीवन उद्घाटित होता है तथा समाज के तात्विक विकास का ज्ञान भी प्राप्त होता है। आदि काव्य रामायण के रचनाकार वाल्मीकि थे जिन्होंने अपने नायक और आराध्य देव राम के चरित्र चित्रण के माध्यम से राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और धार्मिक जीवन का प्रतिपादन किया है तथा राज परिवार और जन परिवार के पारस्परिक संबंध को भी विवृत किया है। इसकी रचना संभवतः 6 सदी ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसका वर्तमान स्वरूप प्रायः 2 सदी ईस्वी पूर्व का है। महाभारत का प्रणयन व्यास ने किया था जो संभवतः 5 सदी ईस्वी पूर्व में प्रणीत हुआ। 3 सदी ईस्वी पूर्व में 1 सदी ईस्वी पूर्व तक इसमें परिवर्धन और परिवर्तन होते रहे। इस ग्रंथ के जय भारत और महाभारत नामक 3 संस्करण हुए हैं। इसमें इतिहास उपाख्यान उपदेश दर्शन आदि का संकलन है। जीवन के विविध पक्षों और समाज से संबंधित विभिन्न समस्याओं का आख्यान के माध्यम से आकर्षक वर्णन किया गया है। प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाओं और धार्मिक अनुष्ठानों पर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अंग पुराण साहित्य प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन के आधार स्रोत में महाकाव्यों के पश्चात पुराणों का महत्व है। पुराण का अर्थ है पुराण आख्यान। इनमें प्राचीन आख्यान और इतिहास विशदता के साथ वर्णित हैं। पुराणों की रचना काल महाकाव्यों के काल से गुप्त काल तक माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है जो भिन्न भिन्न समयों पर रचे गए हैं। ब्रह्म पुराण पद्म पुराण विष्णु पुराण भागवत पुराण नारद पुराण मार्कंडेय पुराण अग्नि पुराण भविष्य पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण लिंग पुराण वाराह पुराण स्कंद पुराण वामन पुराण कुर्म पुराण मत्स्य पुराण गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इनके अतिरिक्त 29 उप पुराण भी हैं। इन सभी पुराणों से सामाजिक और धार्मिक जीवन का उद्घाटन होता है। प्राचीन इतिहास के विविध पक्षों इन पुराणों के वर्णन से आलोकित होते हैं। इसमें वेद तत्व देव तत्व और यज्ञ तत्व के क्रिया पक्ष तथा दर्शन पक्ष को सरल और सुबोध भाषा में विवृत किया गया है तथा विभिन्न उपाख्यानों के माध्यम से धर्म के महत्व और सामाजिक व्यवस्थाओं की अक्षुण्णता भी प्रतिपादित की गई है। पुराणों के 5 विषय लक्षित किए गए हैं। पहला सर्ग या आदि सृष्टि, दूसरा प्रतिसर्ग अर्थात सृष्टि का विस्तार लय तथा पुनः सृष्टि, तीसरा सृष्टि की वंशावली, चौथा मन वनंतर अर्थात किस किस मनु का समय कब कब रहा और उस युग में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी, तथा पांचवा वंशानुचरित। स्पष्ट है कि राजनीतिक इतिहास पर पुराणों के विवरण से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। यद्यपि राजनीतिक इतिहास के तारतम्य के व्यवस्थित न होने के कारण प्रधान कारण यह है कि पुराणों में वर्णित घटना और वंशानुकरण अस्पष्ट है। च स्मृतियां और भाष्य पुराणों के साथ साथ विभिन्न स्मृतियों टीकाओं और भाष्यों का भी प्राचीन सामाजिक इतिहास के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान है। वर्ण जाति आश्रम पुरुषार्थ विवाह परिवार आदि विभिन्न विषयों पर स्मृतियां सम्यक विश्वास प्रकाश डालती हैं। मनु याज्ञवल्क्य नारद बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतियां प्राचीन हैं, जिन पर कालांतर में भाष्य अथवा टिप्पणियां लिखी गई हैं। मनुस्मृति पर मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट की टीकाएं हैं, जो तत्कालीन जीवन के विविध पक्षों को प्रतिपादित करती हैं। विश्व रूप विज्ञानेश्वर और अपरार्क के याज्ञ वर्क के स्मृति पर टीकाएं लिखी। स्मृतियों के समान ये टीकाएं और भाष्य भी सामाजिक जीवन का विस्तृत विवेचन करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्मृतियों की संख्या 36 है, वृद्ध गौतम के अनुसार 56 तथा वैजयंती और मित्रोदय के अनुसार 57। 6. निबंध साहित्य। सामाजिक इतिहास के विषय में अनेक निबंधकारों ने भी अपने अपने विचार निबंधों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। हिंदू सामाजिक इतिहास में धर्म शास्त्र के साथ साथ ऐसे निबंधों का भी महत्व है। काशी के निबंधकारों में नारायण भट्ट, कमलाकर भट्ट और मित्र मिश्र का नाम विख्यात है। देवण्य भट्ट, हिमाद्री भट्ट और माध्वाचार्य दक्षिण के निबंधकार थे, जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक जीवन के विविध पक्षों का आकलन किया है। देवण्य भट्ट की स्मृति चंद्रिका, हिमाद्री की चतुर्वर्ग चिंतामणि और माध्वाचार्य की पराशर माधव नामक कृतियां धर्मशास्त्र के इतिहास में अमर है। मिथिला के निबंधकारों में श्रीदत्त उपाध्याय, चंडेश्वर और वाचस्पति मिश्र के नाम ख्यात हैं। आचारादर्श, स्मृति रत्नाकर और विवाद चिंतामणि इनके ग्रंथ हैं, जिनसे सामाजिक और धार्मिक आचार विचार का विशद वर्णन प्राप्त होता है। जिमूतवाहन, शूलपणि और रघुनंदन बंगाल के निबंधकार हैं, जिन्होंने क्रमशः दाय भाग, स्मृति विवेक और स्मृति तत्व नामक ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक जीवन के इतिहास व्यक्त होते हैं। बल्लाल सेन द्वारा रचित आचार सागर, अद्भुत सागर, दान सागर और प्रतिष्ठा सागर नामक ग्रंथ सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों पर प्रकाश डालते हैं। ज कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। मौर्य युगीन भारतीय सामाजिक और आर्थिक जीवन का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत करने वाला अर्थशास्त्र एकमात्र ग्रंथ है। इसमें जीवन और समाज के विविध पक्षों, कार्यों, समस्याओं और उनके समाधान के लिए राज्य द्वारा निर्मित विभिन्न निर्देशों का विस्तृत विवरण है। साहित्यिक कृतियां। धर्म शास्त्रीय निबंधों के अतिरिक्त अनेक साहित्यिक रचनाएं भी समय समय पर लिखी गईं, जिनसे तत्कालीन सामाजिक गतिविधियां उद्घाटित होती हैं। संस्कृत के महान कवि कालिदास के कुमार संभव, शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र जैसे ग्रंथों से गुप्तकालीन समाज और धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। भास, हर्ष, शूद्रक आदि संस्कृत के अनेक ऐसे लेखक हुए हैं जिनके ग्रंथों में तत्कालीन समाज का चित्रण हुआ है। हर्ष की रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का उल्लेखनीय है। शूद्र ककृत मृच कटिक तदयुगीन समाज का विस्तृत चित्र सम्मुख रखता है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ऐसी साहित्यिक रचनाएं हैं जो इतिहास को भी स्पर्श करती हैं। इनके अतिरिक्त अनेक कथा ग्रंथ भी लिखे गए हैं जिनसे सामाजिक और धार्मिक दशा का चित्रण होता है। गुणाढ्य कृत वृहत कथा का उल्लेख अनेक लेखकों ने किया है, किंतु यह ग्रंथ अनुपलब्ध है। बुद्ध स्वामी की वृहत कथा, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरिता सागर नामक कृतियां भारत के उत्तर प्राचीन समाज और संस्कृति को विवृत करती हैं। दक्षिण के तमिल साहित्य के दक्षिण का सामाजिक इतिहास व्यक्त होता है। मणिमेखले, शिल्पपदिकारम, तिरुक्कुरलम, नंदिकाल कालम्बम आदि ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक कृतियां। प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास से संबंधित ऐसी अनेक ऐतिहासिक कृतियां हैं जिनसे तत्कालीन समाज की विविधताओं और गतिविधियों का पता चलता है। कश्मीरी कवि कल्हण लिखित राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथों में सर्व प्रधान है। इसमें कश्मीर के अतीत से लेकर कल्हण के काल तक का इतिहास संविष्ट है। इसमें सामाजिक रीति रिवाज, आचार विचार और व्यवहार का सुदाहरण उल्लेख है तथा धार्मिक व्यवस्थाओं और पद्धतियों का सम्यक चित्रण है। अनेक कवि लेखकों द्वारा समय समय पर भारत के विभिन्न राजवंशों के राजाओं के चरित्र और उपलब्धियों पर ग्रंथ लिखे गए हैं। इस प्रकार राजाओं के चरित्र के माध्यम से चरित्र काव्यों की रचना की गई, जिनसे तत्संबंधी राजवंशों, समाज, धर्म, संस्कृति और कला पर समुचित आलोक पड़ता है। महाकवि बाणकृत हर्षचरित भी चरित्र प्रधान इति वृत्तात्मक ग्रंथ है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के साथ साथ समकालीन सामाजिक और धार्मिक दशा का भी वर्णन है। प्राकृत काव्य डैडवाहो गौडवाहो भी इतिहास प्रधान चरित्र उद्घाटक कृति है, जिसे वाक्पतिराज ने रचा है। इस रचना में कन्नौज नरेश यशोवर्धन की विजयों का उल्लेख है तथा समाज और धर्म के विषय में भी विवरण दिया है। मालवा के परमार शासकों की वंश और उनके इतिहास से संबंधित पद्मगुप्त परिमल ने नवसाह सांगचरित नामक ग्रंथ का प्रणयन किया है। इसमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक अवस्था का भी विशद विवरण प्राप्त होता है। कल्याणी के चालुक्य वंशी शासकों ने के इतिहास से संबंधित विक्रमा देवचरित नामक ग्रंथ की रचना कश्मीरी कवि विलन ने की थी। दक्षिण कल्याणी के समाज और धर्म का समुचित उद्घाटन इस ग्रंथ में हुआ है। बंगाल के पाल राजवंश के राज्य समाज और धर्म से संबंधित संध्याकर नंद जी द्वारा रामचरित नामक ग्रंथ की रचना की गई। राजस्थान के चामान राजवंश के इतिहास पर जयानक कृति पृथ्वीराज विजय से समुचित प्रकाश पड़ता है। बंगाल के सेन वंश के इतिहास और संस्कृत पर आनंद भट्ट बल्लाल चरित से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। गुजरात के चालुक्य राजवंश के जयसी सिद्धराज और कुमारपाल के चरित्र से संबंधित आचार्य हेमचंद्र ने द्वयाश्रम में महाकाव्य की रचना की थी। चंद्र प्रभ सुर कृति प्रभाव कर चरित गंगा देवी कृत कंपराय चरित सोमेश्वर लिखित चतुर विश प्रबंध बल्लाल कृत भोज प्रबंध जय सिंह सूरी रचित हमीर महाकाव्य गंगाधर पंडीकृत मंडलिक महाकाव्य राजनाथ लिखित अच्युता राज राजा भिद्युकाल मूकवंशम आदि इतिवृत्तात्मक ग्रंथ हैं, जिनसे प्राचीन कालीन समाज और संस्कृति पर सम्यक प्रकाश पड़ता है। इक्षिण भारत के इतिहास और समाज पर तमिल साहित्य से विवरण प्राप्त होता है। नंदी कलक नंदकम कुलोत गण पिल्लै तमिल कलिंग तप्रणी और चोलचरित नामक रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनसे दक्षिण भारत का इतिहास और संस्कृति उद्घाटित होती है। जय नगोंदार ने अपनी कृति करिंग तप्रणी में कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल के समाज को चित्रित किया है। बौद्ध साहित्य प्राचीन भारतीय समाज का इतिहास बौद्ध साहित्य से भी स्पष्ट और निर्मित होता है तथा इसमें हिंदू समाज के पूर्ववर्ती और परवर्ती जीवन का दिग्दर्शन होता है। इसमें जातकों का सर्वप्रथम स्थान है, जिनकी रचना प्रायः ईसा पूर्व पहली सदी में हो चुकी थी। इसकी पुष्टि सांची और भरहुत के स्तूपों पर अंकित कथाओं से होती है। उनमें जातक कथाओं के दृश्य चित्रित हैं। जातकों की संख्या लगभग 550 है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं विवृत हैं तथा उसी माध्यम से जीवन के विविध पक्षों का चित्रण किया गया है। ये कथाएं कल्पित अवश्य हैं, किंतु इनमें सामाजिक और धार्मिक अवस्था का विवरण मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत साहित्य है, जिसके माध्यम से समाज और धर्म का चित्र उभरता है तथा सामाजिक और धार्मिक इतिहास का निर्माण होता है। भगवान बुद्ध के धर्म संबंधी निर्देश वचन और सिद्धांत त्रिपिटक में संग्रहित हैं। त्रिपिटक अर्थात तीन पिटक, पहला शुद्ध पिटक, दूसरा अभिधम्म पिटक और तीसरा विनय पिटक। इनमें से प्रथम दो पिटकों में भगवान बुद्ध के मूल वचन और उपदेश लिपिबद्ध हैं। सूत पिटक में पांच निकाय हैं, दीघ निकाय, मझिमणिकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। विनय पिटक में बौद्ध संघ से संबंधित भिक्षु भिक्षुणियों की आचार संहिता विवृत है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का विवेचन है। इसकी रचना बुद्ध की मृत्यु के बहुत बाद में की गई थी। लंका के पाली भाषा में रचित महावंश और दीपवंश ऐसे महाकाव्य हैं, जिनसे भारतीय समाज धर्म और संस्कृति पर नवीन प्रकाश पड़ता है। मिलिंद पहु नामक पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ मिनांडर नामक यूनानी शासक के अतिरिक्त तत्कालीन समाज और धर्म पर समुचित प्रकाश पड़ता है। महावस्तु ललित विस्तर और बुद्ध चरितम जैसे ग्रंथों में समसामयिक समाज और धर्म का सुंदर चित्रण हुआ। संस्कृत में लिखित दिव्यावदान से मौर्य साम्राज्य के इतिहास के साथ साथ अनेक राजवंशों का इतिहास तथा तत्कालिक जीवन भी चित्रित होता है। मंजू श्री मूल कल्प में प्राचीन राजवंशों की इतिवृत्त संकलित है। चुल्लवग महावग पातिमोख सुत्त, विभंग और परिवर नामक बौद्ध ग्रंथों में भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण और नियमों का उल्लेख है। जैन साहित्य प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास में जैन साहित्य का भी अभूतपूर्व योगदान है। जैनाचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथ केवल जैन आचार और धर्म पर ही प्रकाश नहीं डालते, बल्कि सतत समाज के चित्र भी अंकित करते हैं। जैनाचार्य हेमचंद्र के ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, त्रिशिष्ट लाकुपुरुष चरित, द्वैश्रय महाकाव्य, महावीर चरित आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे तत्कालीन समाज की विविध विधाएं दृष्टिगत होती हैं। भद्रबाहु चरित से जैनाचार्य भद्रबाहु और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पता चलता है। प्राचीन भारतीय समाज को उद्घाटित करने वाले और भी अनेक जैन ग्रंथ हैं, जिनमें प्रसिद्ध हैं वसुदेव हिंडी, बृहत्कल्प सूत्र भाष्य, आचारांग सूत्र, आवश्यक चूर्णी, ज्ञाता धर्मकथा, सम्राट इच्छा कह कथाकोश, लोक विभाग, पुण्याश्रम कथाकोश, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, भगवती सूत्र और कालिका पुराण। मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में राजनीतिक इतिहास के साथ साथ सामाजिक इतिहास भी विशदता से वर्णित है। सोमेश्वर कृत रासमाला और कृतिका कौमोदी से गुजराती संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। राजशेखर के प्रबंध कोश बाल रामायण और काव्य मीमांसा नामक कृतियों से राजपूत कालीन समाज और धर्म निरूपित होता है। उदय प्रभा की कीर्ति सुकृति कीर्ति कल्लोलिनी से सांस्कृतिक जीवन व्यंजित होता है। पुरातात्विक आधार स्रोत। पुरातत्व की सामग्री से भी प्राचीन भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। पुरातत्व के अंतर्गत उत्खनन में प्राप्त समस्त सामग्री संग्रहित की जाती है। साधारणतः इसके चार विभाग किए जा सकते हैं। पहला, खुदाई से निकली सामग्री। दूसरा, उत्कीर्ण लेख। तीसरा, मुद्राएं। चौथा, स्मारक आदि। पहला, उत्खनन से प्राप्त सामग्री। ऐतिहासिक स्थानों पर जो भी खुदाई होती है उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, जिनमें ईंट, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, अनाज के दाने आदि सम्मिलित हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ आदि स्थानों से प्राप्त सामग्री प्रागैतिहासिक युग के समाज, धर्म और कला को उद्घाटित करती हैं। सारनाथ, नालंदा, राजगृह, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, अहिछत्र आदि की खुदाइयों से प्राप्त वस्तुएं ऐतिहासिक युग के जनजीवन पर प्रकाश डालती हैं। अतः उत्खनन सामग्री से राजनीतिक दशा के अलावा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशा का भी चित्रण होता है। विभिन्न स्थानों की खुदाइयों से प्राप्त मृद भांड काल विशेष पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे मृद भांडों को पुरातत्वविदों ने 5 वर्गों में विभाजित किया है। पहला, काले और लाल मृद भांड, जिनके अंदर और बाहर का ऊपरी हिस्सा काले रंग का होता है तथा बाहर का निचला हिस्सा लाल रंग का। ऐसे भांड प्राय गुजरात के लोथल और रंगपुर, मध्य भारत के महेश्वर, नागदा, बहल और नवदा टोली तथा बिहार के गया स्थित सोनपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जो प्राय लौह युग की सतह को स्पर्श करते हैं। ऋग वेद युग को बहुत पहले ही जातियां इस प्रकार के भांडों का उपयोग करती थी, जिनका समय 2000 ईसा पूर्व रहा होगा। दूसरा, गेरुए रंग का मृत भांड, जो गहरे लाल रंग या नारंगी रंग के होते हैं। गंगा के कांठे में ये अधिकता से पाए जाते हैं। बिजनौर, हरिद्वार, बदायूं आदि स्थानों से ऐसे ठीकरे मिले हैं। इनका समय प्रायः 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। चित्रित, तीसरा, चित्रित भूरे रंग के मृत भांड कांस्य युग के परिचायक हैं। ऐसे भांड चाक पर बनाकर आंवे में पकाए जाते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से ऐसी अनेक प्यालियां और तश्तरियां मिली हैं। काली पॉलिश वाले भांडों के नीचे भी ऐसे भांड मिले हैं। इनका काल प्रायः 600 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रारंभिक आर्य संभवतः ऐसे ही भांडों का प्रयोग करते थे। चौथा, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांड विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। उत्तर में पेशावर और तक्षशिला से, दक्षिण में अमरावती से, पूर्व में वाणगढ़ और शिशुपालगढ़ से तथा पश्चिम में नासिक तथा तक ऐसे मृद भांड मिले हैं, जो लौह युग के परिचायक हैं। इनका समय प्रायः 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया जाता है। पांचवा, दांतेदार पहिए से चित्रित भांड प्रायः दक्षिण के विभिन्न स्थानों से मिले हैं जिनका काल 200 ईस्वी तक माना जाता है। ऐसे भांड पश्चिमी बंगाल से भी मिले हैं, अतः स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के मृद भांड विभिन्न काल के लोगों पर प्रकाश डालते हैं। दूसरा, उत्कीर्ण लेख प्रस्तरों, दीवारों, गुहाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों आदि पर खुदे हुए लेखों से प्रमाणिक इतिहास का निर्माण होता है। ऐसे अनेक लेख खुदाई में प्राप्त हुए हैं जिनसे तत्कालीन भारतीय समाज और संस्कृति का दिग्दर्शन होता है। ये लेख राज प्रशासन, दान धर्म, भवन, मंदिर निर्माण, प्रशस्ति आदि को व्यक्त करते हैं। कुछ लेख जन कल्याणकारी कार्य और राज निर्देश को इंगित करते हैं, जो कुछ लेख नाटक और संगीत शास्त्र के विषय हैं। राजाओं के नाम, वंश, सामंत, परिचय, विग्रह संधि, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कार्य इन लेखों में विवृत किए गए हैं। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को लिया जा सकता है, जिसकी सहायता से मौर्ययुगीन समाज, धर्म और संस्कृति का निर्माण होता है। अशोक के ये अभिलेख संपूर्ण भारत में पाए गए हैं। कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त धार्मिक और सामाजिक क्रिया कार्यकलापों का विवरण प्राप्त होता है। शुंग और सातवाहन शासकों के अभिलेख भी इस दिशा में महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। सातवाहन राज महेशी गौतमी महत्व बालश्री का नासिक अभिलेख तथा शक क्षत्रप रुद्रदामा का गिरनार अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन अभिलेख और मुद्राएं तो इतिहास प्रसिद्ध हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से उसकी दिग्विजय की विस्तृत जानकारी ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि उसके सामाजिक, धार्मिक और कलात्मक कार्यों का भी पता चलता है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख भी बहुत प्रसिद्ध हैं। वस्तुतः गुप्तों के काल से 12वीं सदी तक अनेक लेख प्राप्त होते हैं जिनसे तत्कालीन समाज और संस्कृति का उद्घाटन होता है। इन उत्कीर्ण लेखों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख और चौथा ताम्रलेख। तीसरा, मुद्रा। प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास के निर्माण में मुद्राओं का भी अभूतपूर्व योगदान है। इन मुद्राओं से तत्कालीन शासक और उसका समय तो ज्ञात होता ही है, साथ ही भाषा, लिपि, धर्म, समाज और आर्थिक दशा का ज्ञान भी प्राप्त होता है। आहत प्रकार के सिक्के सबसे पुराने हैं, जिनसे धार्मिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। इन सिक्कों का भारी भंडार मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरन नामक स्थान तथा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती नामक स्थान से मिले हैं। मौर्य युग के पश्चात भी की मुद्राएं समय समय पर मिलती रही हैं, जिनसे समाज और धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। यवन, पल्लव, शक, कुषण, सातवाहन, गुप्त, राजपूत आदि विभिन्न राजवंशों के सिक्के मिले हैं, जो अपने अपने युग पर प्रकाश डालते हैं। इनमें गुप्त सम्राट के सोने के सिक्के। चौथा, स्मारक तथा पुरावशेष। प्राचीन स्मारकों से भी भारतीय सामाजिक इतिहास अत्यधिक परिपूर्ण होता है। विभिन्न प्रकार के भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक भवन, साधारण मकान, दुर्ग, चैत्य स्तूप, संघाराम विहार आदि स्मारक के अंतर्गत गृहित कार्य किए जाते हैं। विविध धर्मों से संबंधित मूर्तियां भी निर्मित की जाती थीं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की प्रतिमाएं भी गढ़ी जाती रहीं। पशु पक्षी, लतरबेल, पुष्प, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि की भी प्रतिमाएं उपयुक्त भवनों और धार्मिक केंद्रों में बनाई जाती थी। इन स्मारकों से साधारण जनता के विश्वास, धर्म, पूजा अर्चन, स्थापत्य और मूर्तिकला पर प्रकाश पड़ता है। विदेशी लेखकों के विवरण। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक जीवन के संबंध में विदेशों में भी लिखा जाता रहा है। व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से विकसित किया गया यह संबंध दूरगामी था। भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के संबंध में विदेशी लेखकों ने अपने शहर के यात्रियों और व्यापारियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की और उसे लिपिबद्ध किया। इनके अलावा कुछ ऐसे भी विदेशी लेखक थे जिन्होंने भारत की स्वयं यात्रा की, यात्रा के स्थानों का भ्रमण किया तथा यहाँ के आचार विचार और रहन सहन के विषय में अपने अनुभव के आधार पर अपना विवरण तैयार किया। इस प्रकार ऐसे विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण से भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे लेखकों के अलावा विदेशी राजाओं के राजदूत बनकर कुछ विदेशी भारतीय राजाओं के राज दरबार में आए थे, जिन्होंने आंखों देखा भारतीय विवरण तैयार किया। भारतीय भाषा का ज्ञान न होते हुए भी इन विदेशी लेखकों ने भारतीय संबंधी विवरण लिपिबद्ध किया, यह उनकी विशेषता थी। यह सही है कि भारतीय परंपरा और आचार विचार से अपरिचित होने के कारण कुछ भ्रामक बातें भी वे लिख गए हैं, लेकिन फिर भी उनके विवरण का ऐतिहासिक महत्व है। ये विदेशी लेखक यूनान, चीन और अरब देशों के हैं। क, यूनानी लेखक और यात्री। विदेशी लेखकों के विवरणों को तीन भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, सिकंदर के पूर्व के लेखक। दूसरा, सिकंदर के समकालीन लेखक। तीसरा, सिकंदर के परवर्ती लेखक। पहला, सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक। सिकंदर से पहले के लेखकों में अनेक यूनानी लेखक हैं जिन्होंने भारत के संबंध में यत्र तत्र लिखा है। ऐसे लेखकों में स्काइलस, हेकेटियस, हेरोडोटस तथा टेस्टिस विशेष प्रसिद्ध हैं। स्काइलस यूनानी योद्धा था जो पारसिक नरेश के निर्देश पर सिंध नदी की खोज में आया था, और यहाँ के विषय में उसने जो देखा सुना उसने लिखा। हेकेटियस दूसरी यूनानी लेखक है जिसने भारतीय संस्कृति संबंधी सूचनाओं को संग्रहित किया। हेरोडोटस ग्रीक इतिहासकार था जिसने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में भारत संबंधी कुछ जानकारी अवश्य दी, किंतु उसका भारतीय समाज से संबंधित विवरण अत्यंत संदिग्ध और काल्पनिक लगता है। दूसरा, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक। भारत पर आक्रमण के समय सिकंदर के साथ कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भारत आए थे जिनकी रुचि युद्ध और विनाश से दूर यहाँ के ज्ञान और दर्शन के अन्वेषण में थी। इनमें अरिस्टोबुल्स, नियॉर्कस, चारस और यूनेनिस विख्यात हैं जिन्होंने तत्कालीन भारतीय जीवन का अपने यात्रा वृत्तांत में चित्रण किया। इन लेखकों की मूल कृतियों तो अनुपलब्ध हैं, किंतु इनके सिकंदरकालीन भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विवरण परवर्ती लेखकों द्वारा उद्धृत किए गए हैं, जिनसे तत्कालीन भारतीय और घटनाओं और इतिहास की जानकारी मिलती है। तीसरा, सिकंदर के परवर्ती यूनानी लेखक। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगास्थनीज, डायमिकस, पिलनी, टॉलमी, डायटोरस, एरियन, प्लूटार्क, कॉर्टियस, जस्टिन, स्ट्रैबो आदि का नाम उल्लिखित किया गया है। मेगास्थनीज सर्वाधिक विख्यात यूनानी लेखक था जो सेल्यूकस का राजदूत बनकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने तत्कालीन भारतीय समाज और संस्कृति का अपने ग्रंथ इंडिका में विस्तृत विवरण दिया है। भारतीय समाज के मूलभूत वर्गीकरण को न समझ सकने के कारण उससे भी गलतियां हो गई हैं। डायमिकस सीरिया के सम्राट द्वारा बिंदुसार की राजसभा में राजदूत बनाकर भेजा गया था जिसने भारत संबंधी अपने अनुभवों को लिपिबद्ध किया। पिलनी ने भारतीय पशु पक्षियों, खनिजों और पौधों आदि पर अपना विवरण तैयार किया। भारतीय भूगोल और मानचित्र के बारे में टॉलमी ने जानकारी दी है। एरियन का भारत संबंधी विवरण अधिक उपयोगी है जिसमें भारतीय राजनीति के साथ साथ सामाजिक वृत्तांत भी हैं। प्लूटार्क, कॉर्टियस, जॉस्टिन और अस्टेबो के साथ भारत संबंधी विवरण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के ज्ञान के स्रोत में इनका भी योगदान है। सिकंदर के परवर्ती लेखकों में इन यूनानी लेखकों के अतिरिक्त चीनी और अरब लेखक भी हैं जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के विषय में अपने विवरण तैयार किए हैं। ख, चीनी लेखक और यात्री। यूनानी लेखकों के विवरण के साथ साथ चीनी लेखकों और यात्रियों के भारत संबंधी विवरणों से प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास संबंधित होता है। बौद्ध धर्म से आकृष्ट होकर समय समय पर चीनी यात्री भारत आते रहे और यहाँ के बौद्ध तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात अपना भारत संबंधी यात्रा विवरण लिखते रहे। इन विवरणों से तत्कालीन भारतीय समाज और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। यद्यपि प्राचीन काल के बौद्ध धर्म के भारतीय प्रचारक भी चीन जाते रहे हैं और वहाँ भारतीय धर्म के उपदेशों और सिद्धांतों का प्रचार करते रहे हैं। भारत के इतिहास और संस्कृति के संबंध में लिखने वाला चीन का सर्वप्रथम लेखक शुभाशीन था जिसने अपनी पुस्तक में भारत के इतिहास और संस्कृति के विषय में थोड़ा लिखा है। फाहियान, सुंगियन, श्वानचुआंग, इत्सिंग आदि प्रमुख चीनी यात्री थे जिन्होंने अपनी भारत यात्रा का विवरण तैयार किया। फाहियान 399 ईस्वी में बौद्ध ज्ञानार्जन के लिए भारत आया था। उसकी भारत यात्रा बड़ी लंबी और कठिन थी। उसने पश्चिम उत्तर सीमा से भारत में प्रवेश किया और विभिन्न बौद्ध तीर्थों की यात्रा की थी। उसके काल में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासन कर रहा था। 14 वर्ष भारत में रहकर उसने बौद्ध धर्म और ज्ञान का अर्जन किया। उसने अपनी पुस्तक में तत्कालीन समाज धर्म और संस्कृति पर विस्तार से लिखा है। 518 ईस्वी में सुंग युन बौद्ध धर्मों की खोज में भारत आया था। भारत के विभिन्न स्थानों की 3 वर्षों तक भ्रमण करके उसने 170 ग्रंथों का संकलन किया और तत्पश्चात चीन लौट गया। श्वान च्वांग 629 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। वह 16 वर्षों तक भारत में रहकर विभिन्न राज्यों, बौद्ध तीर्थस्थलों, स्थानों और विद्या केंद्रों में गया। उसने अपने यात्रा विवरण में कान्यकुब्ज, नालंदा और प्रयाग की विशेष रूप से चर्चा की है तथा तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का विशद चित्रण किया है। इत सिंह भी बौद्ध चीनी यात्री था जो 7वीं सदी के अंत में भारत भ्रमण पर आया था। उसने बौद्ध धर्म और समाज का सविस्तार उल्लेख किया है। उसके यात्रा वर्णन में नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्रों का उल्लेख है। ग अरब लेखक और यात्री। भारत का अरब देशों से अधिक घनिष्ठ संबंध 8वीं सदी से प्रारंभ हुआ जो व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से स्थापित हुआ था। यद्यपि इस बीच मुसलमान आक्रमण भी सिंध के प्रदेशों में होने लगे थे, किंतु इसके बावजूद अरब और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंध ढूंढ हो रहे थे। मुसलमान लेखक और यात्री भारतीय विद्याओं और विषयों को अपने यहाँ अनुदित करने लगे थे तथा उन पर चर्चाएं करने लगे। इब्न खुरदाज़बा नामक अरब लेखक ने भारतीय समाज और व्यापारिक मार्गों की चर्चा अपनी पुस्तक किताबुल मसालिक वल मामलिक में की है। सुलेमान अरब प्रदेश का यात्री था जिसने इराक से चीन तक की यात्रा की थी। वह भारत के समुद्री तट के बारे में जानता था। उसने भारतीय सामाजिक आचार विचार, रहन सहन और रीति रिवाज को सिलसिलु तवारीख नामक कृति में विवृत किया है। अबू जैद सराफी ने सुलेमान की पुस्तक पढ़ी थी। यह व्यापार के सिलसिले में फारस से चीन जाया करता था। उसने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा है। मसूदी बगदाद का रहने वाला था जिसने इराक, शाम, आर्मेनिया, एशिया माइनर, अफ्रीका, सूडान, चीन, भारत, तिब्बत आदि देशों की यात्रा की थी। उसके ग्रंथ का नाम मुर्जुज जहब है जिसमें उसने भारतीय सामाजिक स्थिति का चित्रण किया है। अलबिरूनी नामक अरब यात्री ने 230 ईस्वी में भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति से संबंधित तारीख खुलिंद या तहकीके मलील हिंद नामक एक बृहद ग्रंथ की रचना की। वह गजन के शासक महमूद गजनी का दरबारी लेखक था। उसने इतिहास, ज्योतिष, धर्म आदि विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की। वह अरबी, फारसी और ग्रीक भाषा के अतिरिक्त संस्कृत का भी ज्ञाता था। उसकी पुस्तक में विभिन्न वर्णों, जातियों, आश्रमों, संस्कारों, विवाहों, रीति रिवाजों के अतिरिक्त हिंदू धर्म, न्याय, भूगोल, ज्योतिष, गणित, रसायन आदि का भी विशदपूर्वक चर्चा की गई है। अपने कथन और विचार के समर्थन में उसने अपने अनुभव को संदर्भित किया है। साथ ही संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों और ग्रंथकारों का भी उल्लेख किया है। भारतीय वेद, वेदांग, पुराण, छंद, व्याकरण, ज्योतिष आदि विभिन्न विषयों के ग्रंथों से वह परिचित था, अतः उसके ग्रंथ से पूर्व मध्ययुगीन समाज का चित्रण होता है। घ तिब्बती लेखक। तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित विविध विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। वह बौद्ध धर्मावलंबी था, इसलिए उसके लेखन में बौद्ध धर्म के प्रति सहज पक्षपात है। उसने नंदों, मौर्यों, शुंगों आदि राजवंशों के समय के सामाजिक और धार्मिक इतिहास के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। बौद्ध धर्मानुयायी होने के कारण उसका यह प्रधान ध्येय था कि बौद्ध धर्म और समाज को अन्य धर्मों और समाज की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध किया जाए, इसलिए इसके विवरण में स्थान स्थान पर अतिरंजना है। ग ईसाई यात्री। वेनिस के यात्री मार्को पोलो ने 13वीं सदी के अंत में भारत की यात्रा की थी। वह चीन गया था, जहाँ से वह भारत आया। यहाँ से होकर वह ईरान गया था। उसने भारत के, विशेषकर दक्षिण भारत के विषय में विवरण दिया है। अतः ऊपर के इन विविध स्रोतों के आधार पर भारत के प्राचीन काल के सामाजिक जीवन का इतिहास निर्मित किया जाता है, जो प्रागैतिहासिक काल से 12वीं सदी तक के धार्मिक, आर्थिक और बौद्धिक जीवन का तारतमिक विकास और उनमें समय समय पर होने वाले विविध परिवर्तनों को समाहित करता है। विभिन्न प्रकार के साहित्य साहित्यों, पुरातात्विक स्रोतों और विदेशी लेखकों के विवरणों से भारत का सांस्कृतिक इतिहास संपुष्ट होता है, जिसे भारतीय समाज का एक निष्ठ और विशिष्ट चित्र अभिव्यक्त होता है। समाप्त।